ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवदिनेष्ट की। तो आज भागवतम के स्कंद 5 के 26वें अध्याय में, जिसमें नारकीय लोकों का वर्णन है, उसका 11 से लेके 15 तक हम लोग आज पढ़ेंगे, और 11, 12, 13, 14 के हम लोग सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे, और उसके बाद में 15वें नंबर का हम लोग श्लोक भी पढ़ेंगे। तो 11 में अनुवाद में है, इस जीवन में ऋषालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है, अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उसके द्वारा पीड़ित की गई थी, वे रूरू नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असह पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्रायः इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है छोटा सा, श्रीधर स्वामी के अनुसार रूरू को भार श्रृंग अति क्रूरस्य भार श्रृंगाख्य सत्वस्य अपदेशः संज्ञा भी कहा जाता है। शिलजीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इसकी पुष्टि की है। रुरु शब्दस्य स्वयं मुनिनैव टीका विधान लोकेश्व प्रसिद्ध एवायम जंतु विशेषः। इस प्रकार भले ही इस जगत में रुरु दिखाई ना पड़ते हो, लेकिन शास्त्रों से इनके अस्तित्व की पुष्टि होती है। जो व्यक्ति, 12वें का अनुवाद है, जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नरक नामक नरक दिए जाने को अनिवार्य कहा गया है। इस नरक में क्रव्याद नामक रुरु पशु उसको सताते हैं और उसका मांस खाते हैं। ऐसे पशु तुल्य व्यक्ति को जो केवल देहात्म बुद्धि में रहता है, क्षमा नहीं किया जाता, उसे महारौरव नामक नरक में रखा जाता है, जहां उस पर क्रव्याद नामक रुरु पशु आक्रमण करते हैं। 13वें श्लोक में क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीव की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशुओं तथा पक्षियों को पका खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुजाद मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्मों में वे यमदूतों के द्वारा कुंभीपाक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है। 14वें श्लोक का अनुवाद ब्राह्मण हंता को काल सूत्र नामक नरक में रखा जाता है जिसकी परिधि 80,000 मील की है, जो पूरे और जो पूरे का पूरा तांबे से बना है। इस लोक की ताम्र सतह से सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा तथा नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से आध्यात्मिक गर्म रहती है, अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर भीतर में भूख प्यास से और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसा झुलसता रहता है। अतः वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह उतने हजार वर्षों तक यातना सहता रहता है जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। अब हम 15वें श्लोक का श्लोक के वर्ड बाय वर्ड शब्दार्थ पढ़ेंगे और फिर अनुवाद एवं तात्पर्य। या जो कोई तू लेकिन यहां इस जीवन में वै निसंदेह निज वेद पथात वेदों द्वारा बताए गए अपने पथ से अनापदी बिना आपातकाल के अपगतः दूर हटा हुआ पाखंड पाखंडवाद च तथा उपगतः पास पहुंचा हुआ तम उसको असी पत्रवन नामक नरक में प्रवेश प्रविष्ट कराकर कश्या चाबुक से प्रहरन्ते पीटते हैं। तत्र वहां ही असौ वह इतः ततः इधर उधर धावमान दौड़ते हुए उभयतः दोनों धार तीक्ष्ण नोकों से तालवन असीपत्र ताड़ वृक्षों की तलवार जैसी पत्तियों से छिद्यमान छिदकर सर्व अंग जिसका संपूर्ण शरीर हा हाय हतः मर गया अस्मि हूँ इति इस प्रकार परमया असह्य वेदनया पीड़ा से मूर्छितः मूर्छित संज्ञा शून्य पदे पदे प्रतिपग पर निपतते गिर पड़ता है। स्वधर्महा अपने धर्म के नियमों का हंता पाखंड अनुगतम फलम नास्तिक पथ ग्रहण करने का फल भूंगते भोगता है सहता है। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज रिवाइंग इज एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति ना होने पर भी वैदिक पथ से हटता है तो यमराज के दूत उसे असी पत्र वन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वनों वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। इस प्रकार पूरा शरीर क्षत विक्षत होने से वह प्रति पग पग पर मूर्छित होता रहता है और चीत्कार करता है, हाय अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं, मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। तात्पर्य वास्तव में धार्मिक नियम केवल एक है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, श्री भगवान के आदेशों को पालन करना ही एकमात्र धार्मिक नियम है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में विशेषतः प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक है, मनुष्य ईश्वर में विश्वास तक नहीं करते, उनके वचनों का पालन तो दूर रहा। निज वेद पथ का यह अर्थ भी हो सकता है कि किसी के अपने धार्मिक नियमों का समुच्चय प्रारंभ में केवल एक वेद पथ अर्थात धार्मिक नियमों का समुच्चय था, अब अनेक हैं। कोई चाहे जिन धार्मिक नियमों का पालन करें, मात्र बंधनीय है कि वे उनका कठोरता से पालन करें। नास्तिक वह है जो वेदों को नहीं मानता, किंतु यदि कोई भिन्न धर्म पथ का अनुसरण करता है तो इस श्लोक के अनुसार उसे चाहिए कि वह उसका अनुसरण करे। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान अथवा ईसाई, उसे अपने ही धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई स्वतः अपने मन में अपना धर्म पथ गढ़ लेता है तो वह किसी भी धार्मिक नियम का पालन नहीं करता, तो उसे असीपत्रवन नामक नरक की यातना भोगती पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किन्हीं धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए, यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु से किसी भी प्रकार बेहतर नहीं। जो जो कलयुग आगे बढ़ रहा है, मनुष्य नास्तिक होते जा रहे हैं और तथाकथित धर्म निरपेक्षता को ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है कि असी पत्र वन में उन्हें दंडित किया जाएगा, जैसा कि श्लोक में वर्णित है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण रघुनाथान्वितं सजीवं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गराधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पांचवा स्कंद है, पांचवें स्कंद का 26वां अध्याय है और हम लोग श्लोक 11 से 15 तक पढ़ रहे हैं। और इसका जो ये चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है नारकीय लोकों का वर्णन। नारकीय लोकों का मतलब ये है कि जो जैसे कहते हैं ना कि तीन लोक हैं, भूर भुआ स्वा, और तीन लोक जो है वो 14 में बटे हुए हैं, 14 भुवन हैं। तो ऊपर के हैं, नीचे के हैं और बीच में हम लोग हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो जगन्य गुण वृत्ति जो रजो जो तमस है वो अधो गच्छन्ति। तो ये वेदों में है और ये तीन भुवन है, 14 भुवन है, तीन लोग हैं। और उसके बाद जब नीचे सब जो नीचे के जो प्लेनेट हैं, जो अतल सुतल पतल ये सब जो पाताल लोक तक, ये जो नीचे के हैं ये हेलिश नहीं है। हेलिश मतलब नारकीय नहीं है, नारकीय पाताल के नीचे आगे शुरू होते हैं और वो गर्भोदक ओशन तक जाते हैं और उसमें ये तरह तरह से यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन जो जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है, जो नीचे के ग्रह हैं, वहां पे जैसे बलि महाराज का भी ग्रह वहीं पे है जहां पे भगवान उनको सुरक्षा देते हैं, तो वो लोअर प्लैनेटरी नीचे के प्लैनेट्स हैं लेकिन वो हेलिश नहीं है। वहां पे भी तरह तरह के सब सुख हैं और तरह तरह से वहां पे भी भगवान का गुणगान होता है, वो लोअर प्लैनेट्स। तो यहां पे यही बताया कि ईर्ष्यालु का मतलब यही है कि जो हम ईर्ष्या का भाव, जैसे सांप है, सांप का कुछ काम नहीं है, बस वो डंक मारेगा, जहर डालेगा। तो ये ईर्ष्या का भाव, जो बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो हजारों हजारों जन्म तक, जो क्योंकि सांपों की आयु 10,000-20,000 साल होती है, तो उसी उन्हीं में चले जाते हैं। तो ईर्ष्या करना बहुत, इस मामले में ये भी कहा कि नरक में कौन सा नरक है ये जो ईशा में ईशालु व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उनके जो है वो रूरू नामक जानवर के रौरव नरक में, रौरव जो नरक है नारकीय है जो रौरव में वहां पे रूरू नाम का जो ये जंतु है ये सर्प से भी भयानक है, उसके द्वारा जो है वो लोग सताए जाते। तो ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, और ईर्ष्या का मतलब ये भी है कि लोग ईर्ष्यावश या जानवरों के ऊपर अधिकार बताते हुए उनको मार के उनका मांस खाते हैं, जैसे कि जो पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, पोल्ट्री मतलब जो ये लोग मुर्गी पालन वगैरह करते हैं, तो इनको जब इनको ये लोग खाते हैं तो इनके पंख खींच खींच के अलग करते हैं, कितना दयनीय है, कितना सब कुछ है, कोई सोच नहीं सकता कितनी यातना, तो ये कोई समझता नहीं है। जैसे फिजिक्स का भी लॉ है न्यूटन का कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया है इक्वल एंड अपोजिट, बराबर और उल्टी, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो इसको समझना चाहिए कि हम जो भी इवन कई बार जो और एडवांस भक्त होते हैं उनके जो मानसिक स्तर तक पे अपराध हो जाता है, मानसिक स्तर से, हालांकि कलयुग के समय में मानसिक स्तर से अपराध स्वीकार नहीं होता, लेकिन और युगों में मन से भी अगर कोई गलत सोच ले किसी के बारे में तो उसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये यहाँ पे नरक की बात आई और ये रौरव नरक की बात आई। फिर अगले श्लोक में 12वें में कि जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचा के अपने शरीर के ऊपर, क्या जरूरत है ये है कि ये इस तरह से जानवरों को मार के खाने की उनको पीड़ा दे। हालांकि भागवतम में कहा कि जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, हस्तानी चतुष्पदाम, और जो जिनके कोई हाथ नहीं है वो चार पायों का भोजन, जैसे घास वगैरह पेड़ पौधे, वो गाय जो चौपाए हैं वो उनका भोजन है। तो इस तरह से भागवत कहे कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, तो ये फिर ये हम लोग रुके किस जगह पे आके कहां से, तो ये जंगल का राज है। जंगल राज में क्या होता है, जंगल राज में होता है कि एक जीव दूसरे जीव को मार के खाता है। अगर शेर वहां गाय को मार के खा ले तो उसको कोई पाप नहीं लगता, वो किसी नरक में नहीं जाता, क्योंकि वो जीव उस तरह से उसका जीवन है। तो वहां जंगल के राज में जीव जीवस्य भोजनम, लेकिन अब हम लोग मनुष्य की योनि में है, मनुष्य की योनि में अगर हम जीव जीवस्य भोजन वाली कैटेगरी में चले जाएं कि कुछ भी खा ले कुछ भी करें वो गलत होगा। तो जो जीव है जो मनुष्य की योनि है, मनुष्य की योनि में हमें ऊंची हायर इंटेलिजेंस हमारा जो हमारी बौद्धिक क्षमता है वो अधिक है, हम ज्यादा सोचे ना आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशु भी नाराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु समाना। अगर हम लोग ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग आहार निद्रा भय मैथुन ये चीजें चार जानवरों में हमारे में सामान्य है, सामान्यम एतद पशु भी नराणाम, तो फिर क्या धर्मो ही एको, धर्म क्या है कि हम लोग धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसे कि मैंने अमेरिका में एक कोर्स लिया जब मैं वहां पीएचडी कर रहा था, तो उस कोर्स का नाम था स्टडीज ऑफ मतलब डिफरेंट रिलीजन, तो उसमें ब्रूस वॉलनबर्ग वहाँ चर्च के फादर थे और वो उस कोर्स को पढ़ाते थे। तो उन्होंने कोर्स में यही बताया कि जो ये जो 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 आप कि कर्म के ये जो अगर आप क्राइस्ट को नहीं मानते, अगर आप क्राइस्ट को नहीं मानते तो आप नरक में जाएंगे, गो टू हेल। जैसे हम लोग अमेरिका में भगवद गीता को कीर्तन के साथ में बांटते हुए जा रहे थे, तो वहां पे एक साइकिल पे बहुत तेजी से कोई क्रिश्चियन है, बोला क्या है व्हाट इज दिस, तो हमने कहा ये भगवद गीता है, योगा मेडिटेशन की किताब है भारतीय और उपमहाद्वीप का जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो हम यहाँ, बोले तुम लोगों ने बाइबल पढ़ी है, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं पढ़ी लेकिन सुना जरूर है और थोड़ा बहुत समझा भी है, तो बोले नहीं अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी क्राइस्ट को नहीं माना गो टू हेल, आप नरक में जाएंगे। तो मैं सुहास प्रभु जो लॉस एंजल्स टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं उनसे एक बार बात कर रहा था, तो मैंने कहा आप कैसे कृष्णा कॉन्शियस में आए, तो वो बोले कि मैं कैथलिक हूँ, कैथलिक क्रिश्चियन और बाय बर्थ, और मैं हमेशा चर्च में जाता था सुनता था, लेकिन मुझे एक बात से बहुत डर लगता था क्रिश्चियनिटी में कि अगर तुम हेल में चले गए खत्म, कोई रास्ता निकलने का नहीं है। तो जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में हरे कृष्णा के टच में आया प्रभुपाद जी के से मिला, तो तब इस फिलॉसफी को पढ़ के मुझे पता लगा कि नहीं ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, ये आना जाना है, नरक के थ्रू जाके फिर से जन्म लेके फिर तो बिल्कुल खत्म नहीं है। और फिर भगवद गीता में क्योंकि हम लोग डर जाते हैं कि मृत्यु के समय क्या होगा, भगवान का नाम याद आएगा कि नहीं आएगा, माला मैं करता हूं लेकिन मुझे माला के ऊपर इतना अभी अपने अंदर परिवर्तन नहीं दिखता। हालांकि मेरे साथ के भक्त लोग मुझे कहते हैं कि प्रभु यू आर एडवांसिंग, आप बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग कई बार महाराज कहते हैं महाराज अभी भी हमारा सब वही हाल है, हम लोग कुछ भी हमारे में एडवांसमेंट नहीं है। महाराज बोले नहीं, तुम लोग तुम्हें मालूम नहीं चलता, जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप को नहीं दिखता, लेकिन जो रिश्तेदार है बहुत दिनों बाद मिलते इतना बड़ा हो गया तो वो उनको दिखता है। तो ऐसे ही अपनी भक्ति का प्रभाव इतनी जल्दी से हम लोग को नहीं दिखता, लेकिन जो हमारे साथ के भक्त हैं वो बताते हैं कि जैसे शुरू में हम लोग जब नए नए माला करने शुरू की तो 6-7 बजे ऐसे माला शुरू करी और सारे दिन माला ले घूमते रहे, पूरे दिन माला चलती रही, माला हुई भी नहीं ऐसे। फिर धीरे धीरे और हुआ, लोगों ने कहा भाई आप सुबह उठ के माला, अच्छा सुबह उठ के करनी पड़ेगी, ठीक है तो सुबह उठ के करनी शुरू की। फिर और सुबह रात के 2 बजे उठ के करते हैं कुछ लोग, कि 2 बजे उठ के करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ दानवीर महाराज जो कैंसर सिटी में रहते हैं, एक बार वो आए तो रात में उन्होंने 2 बजे उठ जाते। अब 2 बजे उठ जाते तो उन्होंने कहा भाई मुझे रात में कंपनी चाहिए, तो हमारे अनंतरूपा प्रभु हमारे जो गॉड ब्रदर है और मेरा पुत्र अजय गोविंदा दास, तो उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई। अब ड्यूटी लगाई गई कि 2 घंटे वो बैठेगा, 2 घंटे फिर माँ के साथ वो जाके बैठेगा, 2 घंटे और महाराज पूरी रात किताबें लिखना, ग्रंथ पढ़ना, उनका अनुवाद करना और रात में 2 बजे से चैंटिंग शुरू कर देना। तो देखिए वो भी लेवल हम लोगों को लाना है, कुछ लोग ऑलरेडी उस लेवल पे होंगे यहाँ पे तो उस स्तर पे होंगे। तो ये चीज जो है जो ये अब जैसे एक बार अमेरिका में हम लोग किसी भी उसमें गए प्रोग्राम में, तो वहाँ खाने पीने का इंतजाम था, हम लोग तो कुछ खाते नहीं थे, तो वो किसी ने कहा भाई आप क्यों नहीं कुछ खा रहे, कि हम लोग वेजिटेरियन है, हम लोग मीट वगैरह नहीं खाते हैं, अंडा मांस वगैरह नहीं खाते हैं। तो बोले ठीक है आप ऐसा करें, ये पाइनएप्पल के जो छोटे छोटे पीस है ये सुअर के मांस की लेयर्स के ऊपर पाइनएप्पल के पीस रखें, तो ये पाइनएप्पल खा लो। पाइनएप्पल तो ठीक है लेकिन ये इसके पास जो रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है हम लोग, और हम लोग ये चाकू भी नहीं यूज कर पाएंगे, चाकू से कटा हुआ ये अगर नहीं भी रखा हुआ तो चाकू भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो बोले आप लोग क्या करते हैं? जैसे कि एक बार हम लोग गोपाल कृष्ण महाराज ने एक बार कहा कि भाई तुम लोग फ्लाई करते हो अमेरिका से इंडिया में, तो कभी एरोफ्लोट एयरलाइंस में ट्राई करो, बड़े अच्छे अच्छे नए नए जहाज हैं उनके, मैं कई बार मास्को जाता हूँ तो बड़े अच्छे अच्छे उनके जहाज हैं नए। तो हमने एक बार फ्लाइट बुक की तो सिएटल से मास्को का टिकट था, तो आए तो जब इंडिया आए, इंडिया से वापस लौट के जा रहे थे तो उसी रास्ते से मास्को पहुंचे तो वहां बर्फ पड़ी हुई, 2 फुट बर्फ एयरपोर्ट के ऊपर और सब हवाई जहाजों के ऊपर इतनी इतनी बर्फ, तो वहां फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब एक होटल में रखा गया, होटल में रखा गया तो वहां खाने के लिए जो भी कुछ उसमें हर एक चीज में कुछ ना कुछ, और वहां 48 घंटे हम लोगों ने प्रतीक्षा करी। 48 घंटे में वो एक केला मिलता था, एक संतरा, एक सेब मिलता था, उसे 2 दिन निकाल दी। 2 दिन जब दूसरे दिन वो तमाम लोग जो वहां थे हमारे साथ सब इंडिया के ही थे, कनाडा जा रहे थे, बोले कि भाई साहब आप कुछ खाते नहीं, मेरे पे खाते तो बहुत हैं लेकिन ये सब नहीं खाते, प्रसाद वसाद तो खूब खाते हैं हम लोग तो, लेकिन ये चीजें खाने वाले बड़ी मुश्किल है। तो बोले फिर आप कैसे, मेरा भाई साहब मर जाएंगे लेकिन आप चाहे उठा के ले जाना पा, लेकिन ये सब नहीं खा पाए। तो लोगों ने साहब अपने केले संतरे बचा बचा के लाने, प्रभु जी अब आप बगैर कुछ खाए रहते हैं तो हमारे से देखा नहीं जाता, तो हमारे केले आप खा। तो वहां फिर वो बोले साहब आप करते क्या है, ये क्या चीज है? तो बताया कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हमें शुद्ध जीवन व्यतीत करना है, जानवरों को नहीं मारना है, और कई भारतीय हिंदू वहां गाय का मांस खा रहे। बोले साहब क्या करें? तो मैंने कहा इमरजेंसी है, लेकिन जैसे इसमें आया श्लोक के अंदर कि जो आपत्ति के समय विपदा के समय अपने शरीर के इसमें यहाँ कहीं आया है कि कोई कोई इमरजेंसी हुए बगैर, कोई विपदा के समय, जैसे एक बार प्रभुपाद जी मास्को में थे, श्याम सुंदर प्रभु उनके साथ थे और वहां सुबह मार्केट में मॉर्निंग में जो भी कुछ बिकने को आए दूध और मांस प्रभुपाद जी के, और सब्जी वब्जी एकदम इतनी वहां कहां उगती थी, तो श्याम सुंदर उनके साथ थे, प्रभुपाद जी ने कहा कि, और जैसे ही आए वहां क्योंकि इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी थी, USSR था उस जमाने में सोवियत रूस, तो वो मार्केट में सामान आया एकदम खत्म, दूध आया एकदम, तो प्रभुपाद जी तो उन्होंने श्याम अब कोई बर्तन नहीं, तो प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर से एक टॉयलेट में रखे बर्तन को कहा साफ करके इसमें दूध ले लो। तो इधर एक इमरजेंसी सिचुएशन, ये दूध लेना है, दूध का कोई बर्तन तक नहीं है, तो टॉयलेट के अंदर रखा हुआ बर्तन भी यूज कर लिया प्रभुपाद जी ने। तो वो एक क्या कहते हैं कि जो देश काल समय के हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया, वो आपत्ति का समय था। लेकिन ऐसे थोड़ी, ऐसे ही जब कुछ भी खाने को ना हो, कोई भी चीज ना हो, वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन तब कहीं किसी लेवल पे कुछ कंसेशन दिया जा सकता था, शास्त्रों में ऐसा है। लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं थी, वहां पे फल वगैरह थे तो हमने गुजारा किया। तो उससे वहां पे टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, उन लोगों को बताया कि देखो भाई ये माला है, ये मंत्र है, ये चीजें हैं, इसके करने से है। क्योंकि हमारा जो ये मृत्यु लोक का जो ये अस्तित्व है यहां, ये कार्मिक रूप से भरा हुआ है, इसमें डर है। और डर क्या है? ये डर तो सामने भगवान दिखा रहे हैं, डर कि ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये होगा, ये करोगे ये होगा। और इसमें यहां तक भी आया इन्हीं श्लोकों में कि जो लोग जॉब करते हैं, कार्य करते हैं, परिवार का पालन करते हैं, बहुत जॉब पे जाते हैं, चार पैसे मिलते हैं, वहां से लौट के आते हैं, अगर हम ये भगवान का भजन और अपने जॉब का फल, अपने पैसे, अपना धन भगवान की सेवा में ना लगाएं, भगवान के प्रचार प्रसार में ना लगाएं, तो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। और कर्म का बंधन में जब आदमी फंसता है तो कर्म का परिणाम मिलके रहता है। तो हम लोगों, और ये जो हम लोग, जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा, वो लोग सोच सकते हैं कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, भाई हमें कुछ मत कहो, हमें नहीं मालूम क्या होता है बाद में। जैसे है ना कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवम सुखम जीवेत अस्य भस्मस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। ये फिलॉसफी है चर्वक मुनि की। ऋणम कृत्वा, क्रेडिट ले लो, बैग बोरो स्टील, ऋणम कृत्वा ऋण ले लो, घृतम पिबेत घी पियो मतलब एंजॉय करो, खूब छोंक वोंक लगा के बढ़िया। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जियो ऐश करो। बैग बोरो स्टील अस्य भस्मस्य देहस्य, जब ये देह को भस्म कर दिया, जला के राख कर दिया, कुतः पुनरागमन भवेत, कौन आ रहा? कोई भी लौट के नहीं आता, खत्म, वहीं फिनिश, कोई जन्म नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। ये फिलॉसफी दुनिया में चल रही है आज की तारीख में। लोग डरते हैं, पता नहीं, जैसे कि अमेरिका में जब कभी कोई इंडियन हिंदू वगैरह बीमार टर्मिनल होकर अस्पताल में पहुंचे, सेंट लूक एक अस्पताल था, तो मंदिर में फोन आता था कि आप आ जाइए, आपके एक धर्म को मानने वाले कोई हैं, उनको यहां टर्मिनल अनइजीनेस है। टर्मिनल अनइजीनेस ये अमेरिका में मानते हैं लोग। तो ये टर्मिनल अनइजीनेस क्या डिफाइन करते हैं वो लोग, कि उनके यहां एक पार्किंग है, बहुत बड़े बड़े पार्किंग है, पार्किंग में एक पार्किंग सिर्फ फादर के लिए, चर्च के लिए है, रिजर्व पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है वहां, मतलब मंदिर वालों के लिए, चर्च वालों के लिए, सिनेगॉग वाले की एक पार्किंग फिक्स रहती है। उनका यही काम है, जो टर्मिनल लोग सिख हैं, उनको जब टर्मिनल अनइजीनेस होती है, मैं बताऊंगा अभी क्या होती है, टर्मिनल अनइजीनेस होती है तो उनको बुलाया जाता है। अब ये टर्मिनल अनइजीनेस क्या है, बैक टू गॉडहेड मैगजीन में हमारे भागवत दर्शन में इंग्लिश में एक आर्टिकल छपा था, टर्मिनल अनइजीनेस। तो इसका मतलब क्या है, जब यमदूत आते हैं तो आदमी को उनका भयानक रूप, उनके दांत और उनको सब कुछ जब दिखता है तो उसको हाथ पैर कांपते हैं और वो छटपटाता है, तो वो समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। मुझे याद है मेरे फादर बहुत पायस, बहुत जेंटलमैन, कभी किसी का बुरा नहीं किया, शराब सिगरेट मांस तो बहुत दूर की चीज है, और कभी बाहर का भी कुछ खाया ऐसा, और अपना काम किया घर आ गए। उनको जब वो अपने बहुत बीमार हो गए, बेड पे लेटे हुए रहते, तो कहते हैं ना भगा, तो मैं किसे भगाऊं कि ये है तो यहाँ खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं ना भगा। तो मैंने कहा बाबा यार कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं दिख रहा। बोले ये खड़े, तो जिंदगी नहीं दिख रहे खड़े। तो बेसिकली मैं सच बता रहा हूँ, वेरी पायस पर्सन और यमदूत दिख रहे हैं। सोच लीजिए कि क्या, क्योंकि जब आदमी नौकरी करता है चार झूठ बोलता है, चार झूठ बोलेगा उससे इम्प्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का पैसा भी जेब में लाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इससे, इसीलिए हमारा जो अस्तित्व आज के समय मृत्यु लोक में इस, और हम लोग भक्त पाथ भक्ति के पाथ पथ पर हैं, हम लोग का अस्तित्व, भक्त लोग अगर हम नहीं होते तो हमारा डरावा अस्तित्व होता, बहुत हम घबराए हुए होते, पता नहीं कब क्या, क्योंकि अमेरिका के अंदर सर्वे किया कि भाई क्या सबको सबसे बड़ी एंजाइटी है, कि डेथ, डेथ की एंजाइटी है, डेथ, डेथ ही है, डेथ से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या हो, कब डेथ आ जाए। लेकिन भगवद गीता में भगवान ने कहा 18वें चैप्टर के 66वें श्लोक में, सर्व धनमान परित्यज्य, सब चीजों को छोड़ के मामेकम मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वम सर्व पापे भी हो, मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा। और एंड में क्या कहा मालूम, माशुचा, माशुचा का मतलब है डरो मत, डरो मत, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, मैं तुम्हारे पापों का नाश करूंगा। अगर पापों का नाश नहीं हो सकता तो फिर तुम क्रिश्चियन होते? पाप करा, फिनिश, हेल के अंदर जाके खत्म। वहां से अज्ञात सुकृति और तरह तरह से कृपा मिलके या कर्मों के फल को भोगते हुए आदमी आगे बढ़ता है। तो ये जैसे कि प्रहलाद महाराज ने भी कहा सातवें स्कंद में कि मतिर न कृष्ण परतो सतोवा, मतिर न, जिनका दिमाग जिनकी बुद्धि भगवान कृष्णा की तरफ नहीं है, मतिर न कृष्ण परतो, परतो मतलब कोई और समझा दे तो उससे समझ जाए, स्वतोवा अपने आप से समझ जाए, मिथो भी पद्यत के मिथ मतलब कोई गैदरिंग ऑफ डिवोटी को सब दस दस पांच डिवोटी मिलकर समझाएंगे, भाई देखो ऐसी चीज नहीं है, मांसवास नहीं खाते, गलत चीज है, शराब पीना बुरी बात है और ये इससे तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा, तुम दरक में जाओगे, वहां बहुत सफरिंग है, कि मैं तो कोई देखा ही नहीं, कि नहीं देखा है, पढ़ के देख लो, क्योंकि तीन तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो सुन के समझ जाते बेटा शराब पीना गलत चीज है, इससे तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा। अच्छा जी, आज के हम लोग कभी इसी की तरफ नहीं जाएंगे। एक ये है कि भाई घर के अंदर हमारे एक ताऊ जी थे, वो बहुत शराब पीते थे, उनका बाद में लीवर खराब हो गया, उनकी बहुत बीमार पड़े रहे, बहुत सफरिंग हुई, शराब पीने से लीवर खराब हो जाती, इसलिए नहीं पीनी चाहिए, देखें। और एक ही कहने रहे कुछ नहीं फर्क पड़ता, खुद पी के लीवर खराब करके दुखी हो के बाद में, हाँ भाई ये तो बात है, लीवर खराब हो जाता है शराब पीने से। अब ये क्या बात हुई, अकलमंदी किसमें थी कि आप सुनो, सुन के समझ के बात खत्म हो गई। लेकिन उसके थ्रू जाके तो वो लोग थर्ड कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है जिसमें जब तक वो खुद, तो ये यहां पे मिथो भी पद्येत ग्रह बता नाम, जो न दूसरे के समझाने से, ना अपने आप समझ के, ना किसी डिवोटी के ग्रुप से, मिथो भी पद्येत ग्रह बता नाम, जिन्होंने घर व्रत लिया हुआ कि ये घर अतः ग्रह क्षेत्र सुत आप तवितर जनस्य मोहम अहमेति, जो घर के अंदर बिल्कुल फिक्स बैठे हुए हैं, जैसे कि बढ़िया शादी हो गई बच्चों की, घर के अंदर सब सुख सुविधाएं हैं, सारे गर्म ठंडे पानी का अरेंजमेंट है, जूसर लगे हुए हैं, सब चीजें हैं, दो चार नौकर हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, ड्राइवर है, घर बड़ा बड़ा है, आलीशान है। लेकिन एक समय के बाद जब बच्चों की पड़ पोतों की शादियां हो रही, खुशी की बात है, लेकिन आंख से पड़ पोता दिख भी नहीं रहा, खाने के सामान में डॉक्टर ने सब कुछ मना कर रखा, तो पड़ पोते की शादी हो रही, तुम तो मरने को आ चुके, आंख से पोता दिख तक नहीं रहा, शादी में क्या डांस करोगे? इतनी खराब हालत में भी आदमी वहां एंजॉयमेंट का मौका निकाल लेता है। ऐसे जैसे कि रेगिस्तान में कोई आदमी मर रहा हो पानी की प्यास के मारे, कोई आके उसको ये कहे कि भाई साहब मेरे पास पानी है, अरे कहां पानी, दिखाओ दिखाओ पानी कहां है, तो जेब में से एक छोटी शीशी उसमें एक ड्रॉपर निकाल के ड्रॉपर से दो बूंद मुंह में डाल के पानी था, कहने लगे भैया को पानी हो, प्यास और बढ़ा दी, और अब मेरे को ये लग रहा कि कहां से पानी मिलेगा, ये कोई पानी नहीं। तो ये इतना सुख है, इतने से सुख के पीछे आदमी तीन बूंद पानी, एक फिल्म आई थी राजस्थानी थी, दो बूंद पानी, तो ये दो तीन बूंद पानी का, जैसे इस मृत्यु लोग में सुख कैसा है कि आपको जैसे सर से पकड़ रखा, बाल पकड़ रखे, पानी के अंदर डुबाया, और जब आप छटपटाने लगे बाहर निकाला सांस फिर पानी के अंदर, तो जितनी देर बाहर निकला बहुत बढ़िया, फिर पानी के अंदर, तो इतना सुख है कि दो सेकंड को पानी के बाद सांस लिया ये सुख है, बाकी फिर पानी। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो भक्तों के संग में, जैसे कि प्रभुपाद जी से कहते थे कि भक्तों से प्रभुपाद जी कहते थे कि नहीं, एक बार भक्त प्रभुपाद जी के पास आए, बोले प्रभुपाद जी हम लोग कुछ लोगों से मिले, हमने उनको कृष्णा कॉन्शियस वगैरह बताई, वो बोले अरे ये कौन स्वामी, तुम इंडिया से आए, इनको क्यों तुम फॉलो करते हो? डोंट फॉलो एनी वन, किसी को मत मानो, ये जो निज पथ की बात यहां पे आई, चलो कृष्णा निज पथ वेद, निज वेद पथ, निज मतलब अपना, अपनी अपनी दिमाग लगाओ, अपनी फिलोसफी निकालो। तो प्रभुपाद जी ने सुना तो बोले ठीक है, उससे जाके कहो, मतलब उसने कहा उनको कि तुम क्यों ये स्वामी जी की भगवद गीता लेके घूमने लगे, क्यों ये ईस्टर्न फिलोसफी तुमने समझनी शुरू कर दी, अपनी समझो, अपनी लाइफ को खुद से खुद निकालो, अपने तजर्बे से गेन करो चीजें। तो प्रभुपाद जी के पास जो भक्त लोग आए, प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट हुआ, जवाब नहीं बना कुछ, तो प्रभुपाद जी बोले उससे जाके कहना कि भाई ठीक है तुम्हारी बात हमने मान ली, कि किसी की मत सुनो, अपनी निकालो, कुछ मत पढ़ो, अपनी जिंदगी को अपने आप समझो। तो ठीक है उससे कहना कि हम तुम्हारी ही क्यों माने, कि किसी की मत मानो, अरे कहना ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि हम तुम्हारी क्यों मानेंगे, किसी की मत मानो, वह तुम्हारी भी नहीं मानते। तो वो डिफीट हुए। तो कहने की बात ये है कि जो वेद ना मानिया होइले नास्तिक, वेदों को नहीं मानते तो नास्तिक हो जाते हैं और उनके लिए भी नरक है। तो बड़ा इंतजाम है, मरने के बाद का पूरा इंतजाम है बढ़िया, कौन कहाँ जाएगा, क्यों, कौन किसे खाएगा, काटेगा, मारेगा, जलेगा, बहुत इंतजाम है। और आदमी के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग माया में लगे रहते हैं और बहुत ऐसी हमारी जिंदगी है, जीवन हमारा ऐसा है कि एक मिनट में हम लोग माया में चले जाते हैं और पाप भी कर जाते हैं। तो ये चीजें जो शास्त्र हैं, शास्त्र चक्षु, शास्त्रों की आंखों को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि भाई ये चीज ऐसे करनी है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार एग्जाम्पल दिया कि भाई जहर की शीशी है, उसके ऊपर एक खोपड़ी बनी हुई, उसमें क्रॉस लाइन बनी हुई है दो हड्डियों की, और उसमें जहर लिखा हुआ है और पॉइजन, और शीशी बंद है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ के समझ जाओ, नहीं तो खोल के उसको देख रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं खोल के जहर को, कि जानिया सुनिया विष खाइनू, हरी हरी विफले जन्म गवाइनू, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू। जान बूझ के ये जहर जो, ये जो चीज आज इसमें जान बूझ के जो है वो हम लोग फंसे रहते हैं। तो अब ये लोग क्यों एथिस्टिक वगैरह की चीजें होती, क्योंकि जैसे अमेरिका के अंदर बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैल रहा है, वहां चर्चिज में तो लोग जाना बंद कर चुके हैं, क्योंकि नई जनरेशन को, जैसे एक बार प्रभुपाद जी से डेट्रॉइट में एक चर्च के फादर मिलने आए, बोले भाई आप बताइए कि हमारे यहां किस बात की कमी है, इतना बड़ा चर्च है, क्रिश्चियनिटी की इतनी बड़ी मोटी बाइबिल है, हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ये चर्च छोड़ के आपके मंदिर में, टेम्पल में क्यों जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी से एक भक्त बैठे थे बगल में, प्रभुपाद जी तो जवाब दिया नहीं, वो बोले कि अरे आप खिलाते क्या हो, कुकी, और निकला हुआ पुराना सड़ा हुआ जूस, यहां तो गुलाब जामुन है, कचौड़ी है, समोसे हैं, संदेश है, जने क्या क्या इस। और फिर हम लोग डांस करते हैं, म्यूजिक होता है, हम लोग सारी हमारी इंद्रियां जो है वो भगवान में, वो है ना कि सांस में हमारे जो भगवान की अगरबत्ती है, मुंह में हमारे प्रसाद है, और आंखों से भगवान का विग्रह है। तो जो हमारा एंजॉयमेंट है, यानी कि यद पाद पल्लव पलास विलास भक्तियां, भगवान के विलास, राधा श्याम सुंदर विलास, ये जो मंदिर है, जो विग्रह है, जो ये दरबार लगा हुआ है, ये राधा श्याम सुंदर का विलास है, उनका विलास है, उनका ये, उनका जो ये पूरा एक इंतजाम है उनके एंजॉयमेंट के लिए। सब लोग, हम लोग उनके सामने हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कितने प्रसन्न, भगवान का दर्शन, भगवान का महाप्रसाद, प्रसाद और ये सब, और सारे भक्त लोग इतनी सेवा में इतने तरह, ये सब हमारे लिए। प्रभुपाद जी ने देखो कितना पूरे दुनिया में कैसा प्रचार करके ऐसे बड़ा इस्कॉन बना दिया कि कोई 10 किलोमीटर तक तो कोई भूखा नहीं सोता इस्कॉन के मंदिरों के। कितनी ऑपुलेंस है प्रभु भगवान की, कितना प्रभुपाद जी की पावर है, देखो कि कैसे पूरे इस्कॉन को चला रहे हैं आज भी। और ऐसा नहीं है कि भक्तों को बढ़िया प्रसाद नहीं मिलना, नान वान तक मिलती है, स्टफ नान वगैरह वगैरह सब, तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद जो है भक्तों को मिलता है। तो धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो इसमें श्लोक में पदार्थ प्रभुपाद जी ने मेंशन किया कि जब यमराज के दूत, क्योंकि अगला चैप्टर जो है, अगला स्कंद छठवां, उसके अंदर अजामिल वगैरह की कथा है, तो उससे पहले ही इस पांचवे के एंड में लाके ये हेलिश प्लेनेट का जिक्र कर दिया कि भाई अब देखो कैसे हेलिश प्लेनेट से बचा जा सकता है। अजामिल ने बाद में नारायण नारायण अपने लड़के को बुलाया, भगवान के विष्णु दूत आके खड़े हो गए, और यमदूतों का डोंट टच, हाथ लगाने की जरूरत नहीं, हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी है। और इसको यमदूत कहने लगे कि ये क्या, सारी उम्र पाप की है, तुम्हारा आदमी कैसे, कौन। अब यमराज के पास पहुंचे, कहने लगे अब हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी चलती नहीं। हम वहां पहुंचे वो इतना पापी खराब आदमी था, आपने नियम बना रखे, हम उसको घसीट मार के लाते, वहां चार हमारे ज्यादा पावरफुल लोग आए, उन्होंने हमें रोक दिया, उनकी आवाज ऐसी थंडर बोल्ट की, और तेजस्वी चेहरा था, शंख चक्र गदा। तो यमराज ने ठहर जोड़े, समझ गया, घबराओ मत, एक मेरी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट है। वो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो मेरे जो नियम है वो मेरे, हम लोग ये कि देखिए उनका जब इंटरवेंशन हो जाता है, वो जब आ जाते हैं तो फिर हमारी नहीं चलती, हमारी सरकार में फेल हो जाती है। तो आराम से बैठो। तो फिर कि भाई इसने इतने पाप किए, यस भगवान का नियम। जैसे कि मैं बता रहा था ब्रूस वालनबर्ग ने जो धर्म पढ़ाया उसमें ये कहते हैं 10 कमांडमेंट है। तो प्रभुपाद जी कैसे ट्रैप करते थे, प्रभुपाद जी कहते थे अच्छा चलो क्रिश्चियन को कैसे प्रीच करोगे, कि देखो हम सुबह उठते हैं तो वो भी सुबह उठते हैं, हम रोजरी पे माला करते हैं, मतलब हरे कृष्ण मंत्र की माला करते हैं वो भी रोजरी पे, कुछ हैलो बी दाय नेम वगैरह कुछ करते हैं उनके यहाँ भी है, कीर्तन हमारे यहाँ भी है उनके यहाँ भी है, हैलो बी दाय नेम उसका नाम गूंजे, भगवान के नाम की महिमा। तो प्रभुपाद जी कहते मैं उनको यही कहता हूँ कि आपने 10 कमांडमेंट फॉलो, जिस वर्ष में भी आया, कि जो भी आपने नियम बनाए फॉलो करो, जिस भी धर्म में आप हो उस धर्म को रहो, छोड़ो मत। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तुम्हें क्रिश्चियन से हिंदू बनाने नहीं आया, क्योंकि हम हिंदू पहली बात तो है ही नहीं, हम कौन है, हिंदू तो हमारे पूरे वेदों में कोई एक वर्ड कहीं भी नहीं है, ना भगवदगीता में ना भागवत में, ना वेदों में हिंदू वर्ड ही नहीं है। हिंदू वर्ड तो मुस्लिम इन्वेडर जब मिडिल ईस्ट की तरफ से आए, उन्होंने सिंधु रिवर को पार करने में अरब इनमें सिंधु को हिंदू बोल दिया, जो सिंधु के उधर वो हिंदू, क्योंकि सिंधु नहीं वो हिंदू बोल रहे थे। तो कहें कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, विश्व हिंदू परिषद है, क्या है सब, कुछ भी नहीं, हम लोग हैं सनातन धर्मी, हम लोग हैं आर्यन, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर अर्जुन कुतस्वा कशलमिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। अनार्य, आर्य वो है जो जीवन की महत्ता को पहचाने, आर्य वो है जो किसी की सहायता के लिए खड़ा हो, आर्य वो है जो जन्म सार्थक करे फिर दूसरों पे उपकार करे। अमार आज्ञा गुरु हुईया तारो हुई देश जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। तो ये जो फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु की है ये आर्यन फिलॉसफी है और इस फिलॉसफी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहां पे इसमें तरह तरह की जो ये यात्राएं दी जाती हैं, अब कई बार ऐसा लगता है कि कोई आदमी वाई, अमेरिका बहुत बड़ा सवाल है, रिलीजन की क्लास में पढ़ा, फिलॉसफी क्लास में पढ़ाया जाता है, एक फिलॉसफी के कुछ क्वेश्चंस हैं, फिलॉसफी के क्वेश्चंस ये हैं जो पूरे दिमाग लोगों का खराब हुआ हुआ है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में। फिलॉसफी पढ़ के क्या खराब हुआ हुआ है कि अगर भगवान है तो फिर ये जो दुख क्यों है, ये शैतान क्यों है, सेटन क्यों है। जैसे कि जब अमेरिका में वो दो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, दो एरोप्लेन से टेररिस्ट ने अटैक किया, तो उसके एक दो दिन बाद हम लोग इत्तफाक की बात हरिनाम पे निकले हुए थे, तो वहां लोग आए बोले व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप लोग, हमने क्या गलती कर दी भाई, बोले आपने इतने बड़े टावर के ऊपर इतने लोग मर गए आपने क्या किया, तुमने हम क्या करते भाई, हम तो यही कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि कोई पाप करेगा फल भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो वो लोग ये मानते हैं कि रिलीजन का मतलब ये है, धर्म का मतलब ये है कि हमें आराम से खाने पीने को शराब मांस मदिरा वगैरह सब चीज आराम से मिलती रहे, इसके लिए सब इंतजाम भगवान का, तो भगवान को सभी अरेंज करना चाहिए हम लोगों के लिए, ये धर्म है। चर्च में जाने का मतलब यही है, थोड़ा बहुत जो भगवान के बारे में, क्राइस्ट हमारे पाप ले लेते हैं, तुम इतने पाप कर ही नहीं सकते कि जो क्राइस्ट ना ले सके, तो करते रहो कोई चिंता नहीं है, ऐसी फिलॉसफी है, पाप करते रहो, चर्च में जाओ, परगेटरी होती है, पर्ज बटन दबाया पादरी ने और आपने कहा भाई मेरे से ये पाप हुए, और आपने दो चार डॉलर उसमें डाले बॉक्स में, परगेटरी हो गई, परगेटरी आपके सिन पर्ज हो गए, आपने पूरे वीक में फिर पाप करे, फिर सैटरडे में गए फिर $4 डाले फिर पर्ज हो गया, फिर आपके सिन खत्म हो गए। ऐसी हमारे हिंदुओं में है, गंगा जी में नहा के आए पाप धुल के फिर आगे पाप करने शुरू कर दिए। सो सब धर्मों में इस तरह के पाप करने का अरेंजमेंट है और पाप से मुक्ति पाने का इसे कहते हैं प्रायश्चित। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जो भी 6th कैंटो शुरू होने वाला है उसके अंदर यही बात आई, जो प्रभुपाद जी ने जो ये है NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के जो पहला श्लोक है उसके जो तात्पर्य के अंदर सबसे पहले यही बात कही कि कुंजर शौचवम, क्या कारण है कि आदमी जाता है पाप करता है, उसे मालूम चोर रात में निकलता क्यों, उसे पता है कि पुलिस रात में जरा सा कम मिलेगी, लोग भी नहीं मिलेंगे तो रात में निकलता, तो मालूम है कि गलत चीज है तो चुपके से करना रात में छिपके, तो चोर है उसे पता है लेकिन तब भी करता है क्योंकि मजबूर है अपने कर्मों से। तो ये हाथी का स्नान कुंजर शौचवम, जो लोग हम लोग जाके चर्च में या गंगा जी में जाके स्नान किया फिर पाप करें, तो हाथी जब जाता है नदी में नहाता है बाहर निकल के आके अपने ऊपर मिट्टी फेंकता है। तो कुंजर शौच हो, हाथी का स्नान, नहाओ मिट्टी फेंक लो, नहाओ मिट्टी फेंक लो। तो ये स्नान जो है ये उपयुक्त नहीं है हम लोगों को इस। और ऐसा क्यों होता है? चोर क्यों नहीं रुक सकता? क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों से बंधा हुआ है। क्योंकि कूटम बीजम फलोन्मुखम, पाप का परिणाम तीन तरीके से, दो तरीके से, प्रारब्ध अप्रारब्ध। अप्रारब्ध इमीडिएट रिएक्शन, आपने किसी को चाकू मारा पुलिस पकड़े लेगी 6 साल की जेल हो, किसी का मर्डर कर दिया फांसी पर लटका दिया मुक्त, उसी जन्म में वो कर्म भुगत के वो क्लीन हो गया। इसलिए फांसी की सजा का प्रावधान था कि जिसने जो कर काम बुरा काम किया उसका दंड राजा ने दे दिया तो उसकी वहीं उस कर्म से मुक्ति मिल गई। उस कर्म के इसे कहते हैं अप्रारब्ध। और प्रारब्ध के रूप में जो रिएक्शन है, मान लो किसी ने मर्डर किया और बच गया, किसी के हाथ में नहीं आया, अब उसकी रिएक्शन, भगवान तो बैठे हुए हैं तो भगवान पे अगले जन्म में उसको ये दिक्कतें आएंगी, उसको सफरिंग में जाना पड़ेगा। तो वो जो प्रारब्ध की रिएक्शन है वो तीन तरह, कूटम बीजम फलोन्मुखम, कुछ पाप तो उनका फल मुझे मिल रहा है, कुछ पाप मुझे मिलने वाला कुछ बीज के रूप में है, कुछ छोटे पौधे के रूप में है, फलोन्मुखम है। और ये ही कारण है वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों को कई बार क्यों दुख उठाने पड़ते हैं, क्योंकि पुराना कोई कहीं कर्म है जिसका फल आज मिला। तो लोग कहते मैं तो इस लाइफ में कुछ भी नहीं करा, किसी का बुरा नहीं करा, किसी को दुख नहीं दिया, मुझे क्यों दुख मिल रहा है? तो ये पुराने जन्म। तो जन्म जन्मांतर के कर्मों के फलों से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि हम लोग पहली बात तो कोई बुरा काम ना करें। बुरे काम ना करने की शक्ति कहां से मिलेगी? क्योंकि सदा सच बोलो, किसी का बुरा मत करो, और ये अच्छी अच्छी बातें हैं, सब धर्मों में बातें बहुत हैं, लेकिन उस चीज को उसके ऊपर चलना, उस रास्ते पे चलने का जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो हमारे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। क्योंकि ये जो जैसे कई बार मुझे लोग कहते हैं भाई तुम्हारे हरे कृष्णा में, यार ये हमने बहुत देखा कि हमारे वहां पड़ोस में शामली में एक रात दिन शराब मांस मदिरा ये सब चीज करते थे, और वो एक दफे कि राधा गोविंद महाराज कोई आते हैं वहां पे उनके प्रवचन वगैरह सुने और वो तो बिल्कुल सूफी हो गए, वो सब छोड़ दी शराब राम मीट मीट सब छोड़ दिया, शाम को आते हैं घर पे अगरबत्ती लेकर भगवान की पूजा करते हैं। तो हमारे इस्कॉन में चरित्र परिवर्तन, हमारे इस्कॉन में हम लोग ये नहीं कि आप आए मंदिर में 5 रुपए का सिक्का फेंका, घंटा बजाया, 12 बच्चों को प्रसाद बांटा और भक्ति निकल लिए। पंडित जी आए पूजा करके गए, लोग टीवी में से बुलाए के भाई आ जाओ पंडित जी पूर्ण आहुति दे रहे हैं हवन की, लोग टीवी से उठ के आए आहुति देख रहे, बहुत डिस्टर्ब कर दिया, मैच चल रहा था तो मतलब अब पूर्ण आहुति दी जाके फिर टीवी बैठ गए, और औरतें वहां अपना कर रही जो कर रही बेचारी। तो ये कोई धर्म नहीं है हमारे इस्कॉन में। इसीलिए हम लोग चरित्र परिवर्तन की बात, धर्म परिवर्तन नहीं, चरित्र का परिवर्तन, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का उत्थान, ये माला करके, ये कर्मों को हटा के जब जीव शुद्ध हो जाता है तब उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जैसे कि एक बार हमारे मंदिर में अमेरिका में एक लेडी थी, ऐसी होंगी 30-35 साल की, 2-4 साल से मंदिर आती थी, उन्हें वेजिटेरियन फूड पसंद था, और खासतौर से हमारे तो कई बार लोग हमारे बाहर मंदिर की खिचड़ी बढ़ती है तो लोग खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी खा के सो जाते हैं, वाह ये खिचड़ी है क्या, बहुत बढ़िया भाई हमने घर में बनाई कभी ऐसी बनी नहीं भाई, यूं नहीं बनती, भोग नहीं लगता, अब भोग लगा तो उसी खिचड़ी में आपको पता लग जाएगा क्योंकि भगवान ने खा लिया, खिचड़ी बढ़िया हो गई, क्योंकि प्रसाद का एक अलग ही। तो डेवरा जो है वो स्कूल में टीचर थी तो वो बच्चों को स्कूल के ऐसे करके ले आई कि भाई आपको एक हिंदू मंदिर के दिखाते हैं भाई वो क्या करते हैं। तो बच्चों को लेके आई और बच्चों को प्रसाद, हमने डांस वांस कीर्तन वीर्तन कराया, खेल वेल सब थोड़ा लाइट रखा, और वो उनको फिर बाद में प्रसाद खिलाया, बढ़िया सब चीज। तो अब डेबरा बहुत खुश, तो हमने कहा डेबरा आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, तो बोली हाँ आई एम वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपने भगवान की जो ये सेवा की है बच्चों को यहाँ आप लेके आई, इससे आपके अंदर मन के, क्योंकि ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, सवै पुंसा परो भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट 6, सवै पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति अधोक्षजे अहतु की अप्रतियता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा को टच कर जाती है ये सेवा। ड्राइवर का फूड है ये सेवा, ड्राइवर का फूड है ये, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो हमारा ड्राइवर स्ट्रांग बनाना है, जैसे कि हम लोग ड्राइव करते हैं तो अपने गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, अपने लिए पराठे निकाले खाते हैं, तो ऐसे ही हम दुनिया में जो ये काम करते हैं, चार पैसे, घर बार घर सब चीज इंतजाम, लेकिन जो ये प्रसाद है, ये आत्मा का फूड है, हरि का नाम है, ये आत्मा का खाना है, ये ड्राइवर का फूड है, ये बॉडी यंत्र आरूढ़ानी माया है, ये यंत्र जैसी शरीर है और इसके अंदर आरूढ़ानी, मैं बैठ के इस यंत्र पे जा रहा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये यंत्र है एक, और मैं इस यंत्र पे सवार होकर चल रहा हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा फूड ये प्रसाद है या फिर ये हरि का नाम है, भगवान का नाम है। तो ये इसमें बताया कि अगर हेलिश पेरेंट्स है, आदमी को बचना है, उसके लिए यही तरीका है कि हम लोग भगवत प्रचार करें, भगवान की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में जुटे, तो उससे माया हमारे पास नहीं आएगी और हम लोग भगवान की भक्ति में इस प्रकार लग पाएंगे। तो मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। किसी का कोई प्रश्न या कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो या मैंने गलत कही हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।